हम सब लोग जीवन को सफल बनाने का उपाय सोच रहे हैं। इसमें अपने पास दो तरह की बातें मालूम होती हैं। एक तो शरीर के द्वारा किया जाने वाला सर्वहितकारी कर्म और दूसरा शरीर और संसार से असंग होकर अपने में ही नित्य प्राप्त दिव्य जीवन का साक्षात्कार, तत्व का बोध, भगवत मिलन, जो भी कहें। इस संबंध में मानव सेवा संघ की एक सलाह है। कल संध्या समय जैसा हम विचार कर रहे थे कि शरीर के माध्यम से भोग करना भी गलत होता है और योग भी सिद्ध नहीं होता। भोग का परिणाम रोग, शोक, अभाव और मृत्यु, और शरीर के माध्यम से नित्य जीवन से नित्य योग संभव नहीं है। एक ही क्षेत्र है जिसमें शरीर का उपयोग हो सकता है और वह है संसार की सेवा। इतनी चर्चा कल संध्या समय की बैठक में हो चुकी थी। आज एकादशी की तिथि है और हम लोगों ने महाराज जी की सलाह के अनुसार यह निश्चय किया है कि प्रत्येक एकादशी को स्वामी जी महाराज की पुण्य स्मृति में हंसते हंसते इन शब्दों का उच्चारण भी उन्होंने अपने ही श्री मुख से किया कि महाराज जी की पुण्य स्मृति कैसे मनाओगे, तो सत्संग करना। यह प्रोग्राम रखा है, इसमें एक विशेष बात आपकी सेवा में निवेदन करने की ये है कि दर्शन, विज्ञान और आस्तिकता के अनुभव सिद्ध सत्य को जानने वाले संत ने हम लोगों को यह सलाह दी कि देखो भाई, शरीर से जो भी कुछ करोगे वह शरीरों के ही काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। ऐसी बात आपने इस ढंग से कभी सुना नहीं होगा। शरीरों के द्वारा जो भी कुछ करोगे उसका जो भी फल बनेगा वह भौतिक जगत की सीमा के भीतर ही रहेगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, हम तो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तीर्थ करेंगे, ये सब परमार्थ हो जाएगा। नहीं, नहीं हो जाएगा। इन सब के परिणाम स्वरूप एक बात हम कर सकते हैं, शरीर और संसार पर विचार करें तो शुद्ध वैज्ञानिक क्षेत्र की बात है। शरीर और संसार का अविच्छिन्न संबंध है। जिस आप देहात में गंवार लोगों को कहते हुए सुनते हैं, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, सुना है कि नहीं? मैंने तो सुना है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। क्या मतलब? जिस पिंड से इस शरीर की रचना होती है उस पिंड में जो तत्व हैं वे ही ब्रह्मांड में हैं। अर्थात ये सारा ब्रह्मांड और हमारा आपका एक छोटा सा साढ़े तीन हाथ का शरीर, दोनों की जातीय एकता है। एक ही धातु से, पंच भौतिक तत्वों से जिससे ब्रह्मांड बनता है उसी से ये शरीर बना है। तो शरीर और ब्रह्मांड में शरीर और संसार में जातीय एकता है कि भौतिक तत्व से बना हुआ शरीर संसार की सीमा के बाहर नहीं जा सकता, अगर ले जाया जाए तो तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, ठहर नहीं सकता। तो बनता है भौतिक तत्वों से, पाला जाता है भौतिक तत्वों से, विकसित होता है भौतिक तत्वों में, खर्च होता है संसार में और मिट करके मिट्टी में मिल जाता है संसार में, बाहर नहीं गया ना। इस विज्ञान को महाराज जी ने हम लोगों के सामने रखा और कहा कि देखो, जो भौतिक तत्व है उसकी एक विशेषता क्या है, उसका स्वरूप, उसका लक्षण क्या है कि उसमें संघटन और विघटन की क्रिया निरंतर होती रहती है। कुछ अणु परमाणुओं का संगठन हो करके किसी वस्तु का निर्माण होता है और अणु परमाणुओं के संगठन का विघटन करके उसका नाश होता है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। शरीर जिस समय हम लोगों को जीवित दिखाई भी देता है और एक बार की देखी हुई शक्ल को बहुत दिनों तक हम पहचानते भी रहते हैं, फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक क्षण पहले का देखा हुआ शरीर दूसरे क्षण में नहीं है। उसके भीतर भीतर बहुत बहुत परिवर्तन हो चुका। तो जिसमें जिसकी उत्पत्ति होती हो और जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसकी क्षति होती हो और जिसका आदर्शन होता हो, उसको सृष्टि कहते हैं, उसको भौतिक तत्व कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। तो ये लक्षण शरीर पर घटित होते हैं कि नहीं? बन जाना, बदल जाना, क्षय होना, मिट जाना, अदृश्य हो जाना। अब आप सोच करके देखिए कि जिस शरीर का सृष्टि के साथ इतना घना संबंध है कि जिसको सृष्टि के बाहर ले ही नहीं जा सकते, आप कहिएगा कोलाहलपूर्ण समाज को छोड़कर हम एकांत में चले जाएंगे, तो शरीर को ले जाएंगे एकांत में, तो वो एकांत भी संसार ही होगा। कहेंगे कि हम कुटिया नहीं बनाएंगे, हिमालय की गुफा में घुस जाएंगे, तो हिमालय की गुफा जहां आप शरीर को ले जाएंगे वह भी संसार ही होगा। हिमालय की गुफा संसार के बाहर है? तो इतना जिस शरीर का संसार के साथ घना संबंध है, उस शरीर को अपना मानना, उस पर अपना अधिकार जानना और अपने व्यक्तिगत सुख के लिए उसका उपयोग करना बेईमानी है कि ईमानदारी है? जी, बेईमानी है, बहुत साफ है। अच्छी बात, साधन है कि असाधन है? असाधन है। शरीर को अपना मानना बेईमानी है। शरीर का उपयोग अपने सुख के लिए करना, व्यक्तिगत सुख के लिए, असाधन है। अब यही भूल हो जाती है, पहले ही कदम में गलती हो गई, आरंभ ही किया मैंने गलत रास्ते से। कितना भी जप करो, तप करो, ध्यान करो, कुछ करो, कैसे ये असाधन मिटेगा, इसका परिणाम कैसे जाएगा? ये बेईमानी जब तक जीवन से निकलेगी नहीं। जो शरीर 100% संसार का है, उस पर से अपना अधिकार मैं उठाऊं नहीं, उसको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए काम में लाऊं, इस असाधन के करते हुए, इस असाधन के रहते हुए कौन सा साधन है जो मुझको शरीर और संसार से असंग करा देगा? कोई उपाय नहीं। तो मानव सेवा संघ ने असाधन की जड़ काटने की सलाह हम लोगों को दी। सबसे पहली बात क्या करो, शरीर को अपना मानना छोड़ दो। तो किसका माने? भौतिकवादी हो तो जगत का मान लो, सारे शरीर जिसके हैं उसका ये भी एक है। ईश्वर विश्वासी हो तो प्रभु का मान लो, जिसने सब शरीरों को बनाया उसी ने इसको भी बनाया, इतना तो हम जानते ही हैं कि मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो किसका है इस दार्शनिक के झगड़े की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, जिसका जचे उसका मान लीजिए। लेकिन एक सत्य सब किसी को मानना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, और जो चीज अपनी नहीं होती उसका दुरुपयोग करने का भी अधिकार नहीं होता, उसको अपने सुख के लिए बर्बाद करने का भी अधिकार नहीं होता, उसको बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। जिसका है उसी के काम में लगा देना साधन है। भौतिकवाद की दृष्टि से शरीर संसार का है, इसलिए संसार की सेवा में लगा दो तो साधन बन गया। ईश्वरवाद की दृष्टि से शरीर प्रभु का है, यदि उन्हीं की पूजा के रूप में उनकी सृष्टि की सेवा में लगा दो तो ये साधन हो गया। तो किसी भी प्रकार से यह शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और इस शरीर के माध्यम से किया हुआ कार्य संसार की सीमा के भीतर ही रहता है, उसके पार जा नहीं सकता। इसलिए शरीर की सहायता से योग नहीं होता, शरीर की सहायता से बोध नहीं होता, शरीर की सहायता से भगवत भक्ति नहीं होती। अब आप कहेंगे कि हम लोगों ने तो अष्टांग योग की बड़ी महिमा सुनी है। ठीक है, जिन मनीषियों ने आरंभ कराया उन्होंने उस योग की विधि में, पतंजलि महर्षि का प्रामाणिक माना जाता है, उसमें उन्होंने केवल शरीर के व्यायाम को ही योग नहीं कहा है, आरंभ ही किया था सम दम जो शरीर धर्म से ऊपर आरंभ ही होता है वहां से, उसमें इसे एक अंग माना गया। तो सारा व्यक्तित्व ही एक है, और उस व्यक्तित्व का जो भौतिक तत्व है उसको संपूर्ण व्यक्तित्व से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ हद तक उसकी भी चर्चा है। स्थूल शरीर के बाद आप सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आ जाइए, तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यौगिक क्रियाओं के फल स्वरूप जब मन की शक्ति बढ़ती है तो वह मन की शक्ति भी आपको सूक्ष्म जगत की सीमा में ही रखती है, अलौकिक तत्व से मिलाती नहीं है। ये बात बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। सूक्ष्म शक्तियों का विकास जब होने लगता है, सूक्ष्म शरीर के अब उनके माध्यम से अभ्यास के द्वारा, तो उससे जो उपलब्धियां होती हैं वो भी साधक को सूक्ष्म जगत की सीमा में ही विचरण कराती हैं। मन की गति सूक्ष्म हो गई तो यहां से बैठे बैठे दूर गमन की शक्ति आ गई, दूसरों के मन की बात जान लेने की शक्ति आ गई, संकल्प से जैसी चाहे वैसी मन चाहिए वस्तुओं को वर्तमान में उत्पन्न कर लेने की शक्ति आ गई। तो यह जो सूक्ष्म शरीर की शक्ति है यह भी साधक को सूक्ष्म जगत के भीतर ही रखती है। जैसे स्थूल शरीर है वैसे स्थूल जगत है, जैसे सूक्ष्म शरीर है वैसे सूक्ष्म जगत है, जैसे कारण शरीर है वैसे कारण जगत है। तो शरीर के माध्यम से किया हुआ अभ्यास भौतिक शक्तियों की वृद्धि करा देता है, लेकिन उस उपलब्धि को ले करके अगर कोई साधक अपने को योगी मान ले तो वो धोखे में ही रहेगा। उसकी प्राप्त की हुई शक्ति लोक रंजन में खर्च होकर के उसे जहां के तहां छोड़ देगी। एक समय मैं बात कर रही थी महाराज जी ये सूक्ष्म रहस्य मुझे बता रहे थे। मूक सत्संग नित्य योग पर ग्रंथ लिखा जा रहा था तो कहने लगे कि देवकी जी, ये भौतिक जगत की सीमा कोई थोड़ी सी नहीं है, मामूली नहीं है। तुम्हारे देखने सुनने में जितना आता है उतना ही नहीं है, ये तो स्थूल जगत तुमको थोड़ा सा दिखाई देता है, इसका जितना विस्तार है उतना तुम नहीं देख पाती, और उससे भी अधिक विस्तार सूक्ष्म जगत का है, उससे भी अधिक विस्तार कारण जगत का है। ये शरीरों के माध्यम से अभ्यास के आधार पर पाने वाली सिद्धियां भी कुछ कम चमत्कारपूर्ण और कम विस्तृत नहीं है, तो इनमें विचरण करने वाले भी बहुत दिनों तक ये भौतिक जगत की सीमा में ही खोए खोए रह जाते हैं। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? शरीर और संसार के स्वरूप पर विचार करके शरीर के द्वारा अलौकिक तत्वों की अभिव्यक्ति की आशा न की जाए। एक बार अपने किसी मित्र संत की, बड़े अच्छे संत, उनके जीवन की एक घटना सुनाई महाराज ने, और कहा कि उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि जब चाहे तब काया बदल सकते थे। होता है, ये कल्पना नहीं है, हम लोगों को भुलावा देने की चर्चा ये नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। काया परिवर्तन की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। तो महाराज जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने 7 बार काया बदल लिया, सिद्धि एक हुई ना, एक चमत्कार मुट्ठी में आई, तो कौतूहल रहा, मजा आया। तो श्मशान में कोई नया शरीर, मृतक शरीर आ गया, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, हृष्ट पुष्ट रूपवान, और किसी प्रकार से प्राणांत हो गया है। तो ऐसा शरीर जब उनको दिखे तो वो पुराना वाला छोड़ करके उस नए में प्रवेश कर जाए। इस जमाने की बात है, संत महाराज के सामने की बात है। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने 7 बार काया बदल दिया। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा यार, ये बताओ कि तुम्हारे आंतरिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। तो उस संत ने, सच्चे होते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज, बस केवल मेरा कौतूहल शांत हुआ है और कुछ नहीं है। एक सिद्धि प्राप्त करने से भीतर में बड़ा कौतूहल हुआ कि किसी तरह काया बदल के कैसा लगता है। तो इस सिद्धि से उन्होंने काम लिया, 7 बार काया बदल डाली, और इतने करने के बाद उनको तो लोग बहुत पूछते होंगे, महासिद्ध पुरुष कहलाते होंगे। लेकिन उन्होंने जब अपने अंतरंग मित्र से बात करने का अवसर मिला तो स्वामी जी महाराज के पूछने पर उत्तर दिया कि महाराज, कौतूहल शांत हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। यह उदाहरण अपने लोगों के सामने रखकर मैं संत की इस वाणी का समर्थन करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शरीरों के माध्यम से प्राप्त की हुई उपलब्धि स्थूल सूक्ष्म कारण भौतिक जगत की सीमा के भीतर ही काम आती है, उसके बाहर नहीं जाती है। तब क्या करें? अगर इतनी उपलब्धि करने के बाद भी इसकी निरर्थकता को जान करके इसको छोड़ना ही है तो इस भौतिक उपलब्धि के पीछे पड़ो क्यों है? जब छोड़ना ही है, उसके आकर्षण को भी तोड़ना ही है, उससे असंग होकर अलौकिक जीवन में प्रवेश पाना ही है, तो उसके पीछे पड़ो क्यों? तो भोगी ही हुए ना, योगी तो नहीं हो सके। स्वादिष्ट वस्तुओं को खाने का सुख, ये भी एक सुख है। उसी प्रकार से एक शरीर पुराना पड़ गया है, हिलता डुलता हो रहा है, तो काया पलट लेने की उपलब्धि करके काया पलट लेने का सुख, वो भी सुख ही तो हुआ, वो भी तो अनंत नहीं हुआ, तो योगी तो नहीं हुए, रहे तो भोगी ही, ये बताया महाराज जी ने। इसलिए मानव सेवा संघ का बड़ा ही नम्र निवेदन है, आग्रह बिल्कुल नहीं है, जोर एकदम नहीं डाला जाता, बड़ी नम्रता से यह निवेदन किया जाता है कि भौतिक विज्ञान के आधार पर जीवन की वैज्ञानिकता का अनुसरण करना हो और उस सीमा से ऊपर उठना हो, उसमें ये बात आपको जच जाए, तो आप इस सत्य को स्वीकार करिए कि शरीर के द्वारा भोग करने से रोग शोक अभाव और मृत्यु मिलेगी, शरीर के माध्यम से योगवित होने की चेष्टा करने में बहुत सा समय बेकार को बर्बाद होगा। स्वीकार कर लेना अगर जी चाहे तो, न चाहे तो मत स्वीकार करना। महाराज जी साधक को कभी भी उलझन में डालना नहीं चाहते थे, तो कह देते कि देखो भाई, अगर ये बात तुम्हें अच्छी लगे तो मान लो, मान लोगे तो तुम्हारा उपकार हो जाएगा, और मैं निर्भय कर देता हूँ तुम्हें कि इस बात को नहीं मानोगे तो तुमको कोई नया घाटा नहीं लगेगा। ये मत करना कि संत की वाणी थी, मैंने सुन लिया और नहीं माना तो कुछ नया पाप बन गया, सो नहीं बनेगा। करना क्या है, बड़ा लाभ रहता है और बड़ी सुविधा रहती है कि शरीर भौतिक जगत का तत्व है, नाशवान है, तो इस नाशवान शरीर को साथ में लेकर अविनाशी साम्राज्य में मेरा प्रवेश नहीं होगा, यह जान करके इस नाशवान शरीर के माध्यम से दिखाई देने वाली सृष्टि के कुछ काम आ जाओ, बड़ी सुविधा रहती है। इसीलिए महाराज जी ने किसी किसी के कहने पर भी अपने निकट के साधकों को वस्त्र रंगाने की सलाह नहीं दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि संन्यास का उनके जीवन में महत्व नहीं था, तो नहीं है, ये तो स्वयं सन्यासी थे, महत्व तो था, लेकिन हम लोगों की तैयारी देखकर उन्होंने ये सलाह दी कि यदि संन्यास दे दिया जाए तो जिन छोटी छोटी सेवाओं के द्वारा तुम्हारे राग की निवृत्ति संभव है, जिन छोटी सेवाओं के द्वारा तुम्हारा शरीर विश्व के काम आ सकता है, जिन छोटी सेवाओं के द्वारा तुम्हारे में जो गुणों का अभिमान है वो गल सकता है, उसको उन सेवाओं को करने में तुम लोगों को कठिनाई हो जाएगी। एक मान्यता है ना, एक स्वीकृति है, उसको स्वीकार कर लेने पर उसकी मर्यादा के अनुसार चलना पड़ेगा। समझ में आता है? तो वेश धारण करने का एक महत्व होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी तैयारी से पहले उसका धारण करना ठीक नहीं होता, इसलिए उन्होंने सलाह दी। किसी किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज आपने देवी जी को संन्यास क्यों नहीं दिया, तो बहुत प्रकार के उत्तर देते थे महाराज। कभी कह देते थे ये तो अलिंग सन्यासी हैं बिना वेश के, कभी कह देते थे इन लोगों को हमने संन्यास का व्रत दिला दिया है, कभी कुछ इस तरह की बातें बता दिया करते थे। अर्थ क्या है कि शरीर का जो राग है उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान के प्रकाश में इससे संबंध विच्छेद करो, भाव के आधार पर अपने सहित ये सब कुछ भगवत समर्पित कर दो और कर्म के आधार पर इसके द्वारा जगत की सेवा करो, तो क्या होगा कि शरीर संसार के काम आ जाएगा और जब इससे अपना संबंध टूटेगा, जब इसकी आसक्ति मिटेगी, इसका राग मिटेगा, तब शांति काल में इससे तादात्म तोड़कर नित्य अविनाशी जीवन से नित्य योग के अधिकारी हम हो पाएंगे। तो जिससे संबंध तोड़ना है उसी के स्तर पर अटके रहना योग की बड़ी भारी बाधा है। तब आप कहेंगे कि सामूहिक प्रार्थना का क्या फल है, सामूहिक कीर्तन भजन का क्या फल है, तीर्थ यात्रा और स्नान का क्या फल है, वो भी बताती हूँ मैं। महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया, कहा कि देखो साधक में इस प्रकार के संकल्प भी होते हैं जिस शरीर के माध्यम से हजार प्रकार का काम किया मैंने, अब साधक होने के बाद भी रह रह के जी में उठता रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। आप जैसे बार बार पूछ रहे थे ना, ये तो जनरल हो गया, पर्टिकुलर क्या करूं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, न जाने कितने जन्म हम लोगों ने बिता दिए शरीर के माध्यम से हजार प्रकार का काम करते हुए। तो अपने को साधक की सूची में शामिल कराने के बाद भी साधक के जी में रह रह के उमंग उठता है कि अब साधन के रूप में मैं क्या करूं। जाने हुए असत्य को अस्वीकार करो, ये तो एक सेकंड में हो गया, तो जनरल बात हो गई। शरीर तुम्हारा नहीं है उसको अपने लिए मत मानो, ये तो जनरल बात हो गई, मांस के लिए सबके लिए। अब हमको तो कुछ करने को बताओ, करूं क्या मैं। तो महाराज जी ने ये कहा कि देखो शरीर को लेकर जब कभी किसी प्रकार के साधन में सम्मिलित हो, जैसे कि एकांत में ध्यान करना, इष्ट का नाम जपना, व्रत उपवास करना, तीर्थ करना इत्यादि, शरीर के माध्यम से कोई भी साधन करने चलो तो अपने इष्ट को याद करके यह प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ साधन मुझसे बन पड़े उसका फल सारे संसार के लिए कल्याणकारी हो जाए। जैसे कमाए हुए धन को अगर केवल अपने लिए रखो तो चित्त शुद्ध नहीं होता है, की हुई सेवा के फल में सम्मान का भोग करने लगो तो चित्त शुद्ध नहीं होता है। तो कहा जाता है क्या कि भाई सेवा करो परंतु उसका अभिमान मत रखो, सेवा करो उसके बदले में संसार तो तुमको सम्मान देगा, क्योंकि संसार भी तो प्रभु का ही प्रतिरूप है, तो प्रभु किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। और संसार भी जानता है किस बात को कि हम लोग सम्मान के भूखे प्यासे हैं, शर्माना नहीं चाहिए, अपना नंगा चित्र खोल करके रखेंगे नहीं तो साधक कौन काम देंगे। संसार इस बात को जानता है क्योंकि अंतर्यामी प्रभु इस बात को जानते हैं, तो थोड़ी सी भी अच्छाई का वेश मैं बनाऊं तो संसार मुझको सम्मान दे देता है, लेकिन उसका भोग करेंगे हम तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो चित्त शुद्ध नहीं होगा इसलिए उस व्यक्तिगत कमाई हुई संपत्ति को व्यक्तिगत न मानना और शरीर से की गई सेवा के बदले में सम्मान का भोग न करना, ये सब जो साधन बताए गए ये बड़ी सच्ची बातें हैं। इसी आधार पर महाराज ने कहा कि जैसे व्यक्तिगत सुख भोग से अपना पतन होता है और उसी शरीर को समाज के लिए मानो तो उत्थान होता है, उसी तरह से शरीर के माध्यम से साधन किए बिना तुमसे न रहा जाए तो खूब खुशी से करो, इष्ट का नाम भी खूब प्रेम से जपो, इष्ट का ध्यान भी खूब लगन के साथ करो, तीर्थ यात्रा भी बड़ी पवित्रता से करो, तीर्थ स्थानों में स्नान भी करो, लेकिन जो भी कुछ करो उसके पीछे तुम्हारा ये भाव रहे कि प्रभु इस साधन का फल सारे संसार को मिले। बड़ा भारी वैज्ञानिक सत्य है और इसका एक फल महाराज जी ने मुझको एक बार दिखलाया, बड़ा मजा आया। कहां से मैं आ रही थी स्वामी जी के साथ, मुकामा घाट है बिहार प्रांत में, वहां जहाज से उस समय हम लोग पार करते थे, पुल नहीं बना था, तो जहाज से पार करके दक्षिण से उत्तर हम लोग आए। उसी समय चंद्र ग्रहण लगा था, सवेरा होने वाला था और खूब गंगा जी में स्नान की धूम मची थी। महाराज जी ने पहले से प्रोग्राम बना लिया था कि हम लोग मुकामा घाट पर जब उस पर उतरेंगे तो गंगा जी में स्नान करेंगे, तो सब लोग तैयार हो गए स्नान के लिए। मुझसे कहा कि चलो स्नान करो, तो मुझको न गंगा जी के स्नान में उतनी श्रद्धा, न तीर्थ की उतनी श्रद्धा, ये सब कुछ थी नहीं। तो मैंने कहा कि महाराज मैं तो नहीं नहाऊंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं नहाओगी? तो महाराज जी को जवाब क्या दे, तकलीफ थी मुझको, चमड़े में सारे बदन में जगह जगह पर एक्जिमा के दाने निकले थे और उसमें ठंडा पानी लगने से बड़ी खुजली होती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके महाराज जी को बताया, महाराज मेरे सारे शरीर में खुजली है, चमड़े में एक्जिमा है, मैं नहा लूंगी तो बहुत नुकसान होगा, बहुत खुजली हो जाएगी। तो महाराज जी के साथ रहने पर मैं बीमार होने से बहुत घबराती थी कि सेवा छूट जाएगी, काम नहीं होगा, और महाराज जी को बड़ी चिंता होती थी, तकलीफ होती थी, उनको सेवा करनी पड़ती थी, तो हम बहुत बचा के रहते थे। खूब जी चिराया मैंने, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं नहाएंगे, हम नहीं नहाएंगे, हम कपड़ा नहीं उतारेंगे, उनको ठंड लग रही है, हम नहीं खाएंगे, हमारे कमरे में खुजली हो जाएगी, हम नहीं नहाएंगे। महाराज जी पानी में जाके नंग धड़ंग खड़े हो करके लाठी को फैला करके कहते हैं कि तुम क्यों सोचती हो कि तुम स्नान कर रही हो। अब सुनते जाइए उनकी बातों को, तुम क्यों सोचती हो कि तुम स्नान कर रही हो, अपने लिए नहाओगी तो ठंडा जल जरूर नुकसान करेगा, अपने लिए नहाओगी ग्रहण नहाने का फल मुझको मिलेगा, अपने लिए नहाओगी तो ठंडा जल एक्जिमा में जरूर नुकसान करेगा, तुमको क्यों नहीं सूझता है जितने लोग वृद्ध और बीमार और गंगा नहाने के श्रद्धालु नहाने की इच्छा रखते हुए भी तट पर नहीं पहुंच सके हैं, तुम क्यों नहीं सोचती हो? इसलिए लाली अपने लिए नहीं सबके लिए स्नान करो, इस तीर्थ स्नान का, इस ग्रहण में स्नान करने का फल सबको मिले, इस भाव से स्नान करो, कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर जोर से डांटा, चलो अब इसके बाद कैसे रुके, डरते डरते सब कपड़े भी उतार दिए, पानी में घुस भी गई, स्वामी जी ने डंडा पकड़ा करके खूब डुबकियां लगवा दिया एकदम, तो नहलाने लगते थे तो बस खूब डुबकियां लगवा दिया। पता नहीं महाराज जी के कहने से कैसे वो भाव, कैसे वह सत्य मुझ पर छा गया कि मुझको ऐसा दिखाई देता था, बिल्कुल प्रत्यक्ष मैंने देखा कि जैसे हजारों हजार शरीर डुबकी लगा रहे हैं वैसे ये भी एक डुबकी लगा रहा है, और ठंडक का तो मुझको पता ही नहीं चला, पानी पानी के ठंडक का स्पर्श मुझे नहीं हुआ, और मैं डुबकी लगा रही हूँ ये भी मुझको मालूम नहीं हुआ। जैसे अनेक शरीरों को मैं डुबकी लगाते हुए देख रही थी, वैसे इसको भी डुबकाते हुए मैंने देखा, कुछ नहीं पता चला। बड़ा मजा आया। हमने कहा कि अच्छा, ये सर्वहितकारी भाव शरीर संसार का है, तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से जो कुछ करो उसका फल सारे संसार को दे दो। तो केवल एक सेकंड के लिए महाराज जी की वाणी का ये सत्य मुझको प्रभावित कर गया, तो ठंडक भी नहीं लगी, नहाने की तरह बदन भीगने का अनुभव भी नहीं हुआ, एक्जिमा का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, और खूब उनके साथ आनंद से नहा करके वो चली आई। तो ये घटना आपके सामने रखकर मैं यह सत्य निवेदन करना चाहती हूँ कि सचमुच शरीर हम लोगों का है नहीं, और अपना नहीं मानोगे तो इसके द्वारा किया हुआ कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेगा। कर्म बंधन से मुक्ति हम लोग चाहते ना, तो कुछ भी करो तो उसका फल बनता जाता है, उसका बंधन बनता जाता है। तो शरीर संसार का है, इस सत्य को जानो, और शरीर के द्वारा जो भी कुछ करो उसका फल संसार को दे दो। तो क्या होगा? कर्म के फल का बंधन नहीं बनेगा, आवागमन का चक्र कट जाएगा। इतना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है इस जीवन में, इस शरीर का संसार के लिए उपयोग करने में, और जो इतना कर लेता है उसके लिए योगवित होने में भी, तत्ववित होने में भी, भगवत भक्त होने में भी कोई कठिनाई नहीं।
इन नेत्रों को अनंत सौंदर्य क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए कि ये सीमित सौंदर्य को देखने से संतुष्ट हो जाते हैं। इस मन को अनंत ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि यह सीमित ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है। इस मन को अनंत रस क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि यह सीमित रस से संतुष्ट हो जाता है। इस अहंता को अनंत जीवन क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि यह सीमित जीवन से संतुष्ट हो जाती है। जिसमें अनंत सौंदर्य हो, अनंत ऐश्वर्य हो, अनंत माधुर्य हो, उसे रस देने के लिए किसी गुण विशेष की अपेक्षा नहीं है। उसे रस प्रदान करने में केवल प्रियता ही समर्थ है, केवल प्रियता। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आने वाला कल तुम्हारे अधिकार के बाहर है, केवल वर्तमान को सुधारो, कहीं यह क्षण भी व्यर्थ न बीत जाए। अपने को प्रभु की मर्जी पर छोड़ दो और शरीर को संसार की मर्जी पर, फिर देखो जीवन की कौन सी समस्या शेष रह जाती है, अर्थात कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। शांत रहो, अत्यधिक शांत। विचारो, प्रलय में भी मेरा चित्त अक्षुब्ध रहेगा, क्योंकि वह परमात्मा से युक्त है। चित्त में विचारों को ठूसो मत, चित्त के उद्गम में से उन्हें उभरने दो। तुम्हारा एक एक विचार परमात्मा का संदेशा लाएगा। देखो तो सही, तुम्हारे हृदयेश्वर क्या कहते हैं। जो सृष्टि आपको दुख देती हुई प्रतीत होती है, वह न तो आस्तिकवादी की दृष्टि में है, न अध्यात्मवादी की दृष्टि में, और सच बात तो यह है कि वह भौतिकवादी की दृष्टि में भी नहीं है। दुख देने वाली सृष्टि तो व्यक्ति ने अपने आप में से ही उत्पन्न की है, जाने हुए असत का संग करके। भौतिकवाद की दृष्टि से सृष्टि व्यक्ति का विकसित व्यापक रूप है। अध्यात्मवाद की दृष्टि से सृष्टि उसका अपना निज स्वरूप है, और आस्तिकवाद की दृष्टि से सृष्टि अनंत की अनुपम लीला है। आस्तिकवादी साधक सृष्टि के स्वरूप में अपने प्रेमास्पद की अनुपम लीला का दर्शन कर अनेक रूपों में उन्हीं को लाड़ लड़ाते हुए उन्हीं की प्रीति हो जाता है। विचारशील अपनी दृष्टि से केवल अपने ही दोषों को देख, उनके त्याग का दृढ़ संकल्प कर, अपने में निर्दोषता की स्थापना कर अचिंत हो जाते हैं। सच्चे भक्त के हृदय में लेश मात्र भी राग द्वेष शेष नहीं रहता। राग द्वेष मिटते ही पवित्र प्रीति की गंगा स्वतः लहराने लगती है। सच्चा प्रेमी प्रीति बनकर प्रीतम से अभिन्न होता है। जो साधक कभी किसी के दोषों को नहीं देखता, उसको साधन में सफलता अवश्य होती है, क्योंकि अपने पराये दोष न देखने से चित्त निर्मल हो जाता है। भक्त वही है जो संसार से निराश होकर सब प्रकार से प्रेम पात्र का हो जाता है। आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन न करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। जिस मन से वस्तुओं की सत्यता तथा प्रियता निकल जाती है, वही मन प्रेम पात्र की पवित्र प्रीति का आस्वादन कर सकता है। साधन वही सार्थक है जो सहज तथा स्वाभाविक हो। अतः निरंतर सहज भाव से प्रेम पात्र को पुकारो। प्रेम पात्र की अहित की कृपा का बल सभी बलों से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम पात्र की कृपा प्रेम पात्र को मोहित करने में समर्थ है। अतः जिन प्राणियों ने उनकी कृपा का सहारा लिया, वे सभी मुक्त हो गए। यह सिद्धांत निर्विवाद सत्य है। ज्यों ज्यों मन बाहरी सहारे छोड़ता जाता है, त्यों त्यों प्रेम पात्र की कृपा का बल स्वतः मिलता जाता है। अतः अपने को सभी बाह्य वस्तुओं से असंग कर लो, अर्थात किसी भी वस्तु के आधार पर प्रसन्नता मत खरीदो।
तीन व्रतों का उल्लेख किया स्वामी जी महाराज ने, सेवा करने के लिए सभी को अपना मानो, अपने सुख के लिए किसी को अपना मत मानो और केवल प्रेमी होने के लिए केवल प्रभु को अपना मानो। मानने का स्वभाव है हम लोगों का, किसी न किसी को हम लोग अपना मानते हैं और किसी न किसी कारण से मानते हैं। तो बहुत सी वस्तुओं को अपना माना, बहुत से व्यक्तियों को अपना माना और किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ अपना संबंध रखा। तो मानने तो आता है हमें, स्वीकृति मनुष्य के जीवन में है, परंतु भगवत अनुरागी संत ऐसा बताते हैं कि विवेक विरोधी स्वीकृतियों को जीवन में रखने से अनेकों विकारों का जन्म हो गया, जिसके साथ नित्य संबंध है नहीं, हो सकता नहीं, और जिसके साथ अपना सदा का नाता निभ सकता नहीं। कोई साथी संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो हमेशा के लिए हमारा साथ दे सके और जिसका साथ हमेशा के लिए प्रिय लग सके, ऐसा कोई साथी संसार में मिलेगा नहीं। इसलिए केवल प्रेमी होने के लिए प्रभु को अपना मानना, यह विश्वास पक्ष का सबसे ऊंचा, सबसे बढ़िया उपयोग है। जैसे क्रिया शक्ति जो शरीर में है हम लोगों के, सबसे बढ़िया ऊंचा उपयोग सेवा है। कुछ करने का बल है तो सेवा करना चाहिए। ऐसे ही विचार की शक्ति जो है मनुष्य में, उसका सर्वोत्तम उपयोग है निज स्वरूप की खोज, संसार के स्वरूप का परिचय लेना। जिसका अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व जिसका नहीं है, केवल जिसकी प्रतीति हो रही है, उसके प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेना विचार शक्ति का सबसे बढ़िया उपयोग है। तो उसी प्रकार भाव शक्ति का सबसे बढ़िया उपयोग है कि बिना देखे बिना जाने परमात्मा को केवल प्रेमी होने के लिए अपना मान लिया जाए। इसी आधार पर मानव सेवा संघ की प्रणाली में ऐसा कहा गया कि सत्संग में कोई भी भाई कोई भी बहन पराधीन तथा असमर्थ नहीं है। अर्थात सत्य की स्वीकृति में कोई भी भाई कोई भी बहन पराधीन नहीं है। क्यों पराधीन नहीं है? क्योंकि इसमें बाहरी वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति की सहायता नहीं चाहिए। दो चार लोग सहायता करेंगे तब हम सत्य को स्वीकार करेंगे। शरीर बड़ा बलिष्ठ होगा तब हम परमात्मा को मान पाएंगे। बहुत बहुत दिनों तक उपवास करेंगे तब परमात्मा को स्वीकार कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा पढ़ना लिखना करेंगे, बहुत अध्ययन होगा तब ये स्वीकृति बनेगी, ऐसा नहीं है। जो जीवन सबसे उत्तम है और जो सबके लिए समान रूप से अनिवार्य है, उसमें व्यक्ति को पराधीन नहीं बनाया गया। बड़ी स्वाधीनता है इस क्षेत्र में, बड़ी स्वाधीनता है मनुष्य के जीवन के इस पक्ष में कि हम चाहे कैसे भी हो, यदि स्वयं के द्वारा उस अलख अगोचर अविनाशी परमात्मा को अपना मानना पसंद करे तो कर सकते हैं। कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, इतनी स्वाधीनता है। और प्रेम पंथ का साधक होने के लिए यह ऐसा अनिवार्य तत्व है कि जो परमात्मा को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी विधि विधान से भक्त नहीं हो सकेगा। दोनों ही बातें देख लो, जो इस सत्य को स्वीकार करना पसंद करेगा उसको किसी भी प्रकार की शक्ति बाधा नहीं डाल सकती है। अपने द्वारा स्वीकार करना है, हम कर सकते हैं। और जो इस सत्य को, इस मौलिक बात को, जो आस्तिक दर्शन का सार सर्वस्व है कि आत्मीयता का संबंध प्रभु से मान लेना, इस सत्य को अगर आप स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तो किसी भी जप से, तप से, क्रिया से, विधि विधान से आपके भीतर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इसी को मौलिक सत्य कहते हैं, इसी को सर्वमान्य सत्य कहते हैं, इसी को आस्तिक दर्शन का सत्य कहते हैं। ये एक चीज ऐसी है कि जो स्वीकार कर ले वो चाहे किसी भी विधि विधान से करे, तो ना करे, तो माने तो ना माने, तो उसमें बल हो तो ना हो तो कुछ परवाह नहीं, केवल इस सत्य की स्वीकृति मात्र से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, अहम में परिवर्तन आता है, अपने ही में विद्यमान, नित्य विद्यमान अपना परमात्मीय परमात्मा स्वयं ही प्रकट होकर उस साधक को विश्वास भी दिला देते हैं, शक्ति भी दे देते हैं, उसके दिए हुए प्रेम भाव को आदर पूर्वक स्वीकार भी कर लेते हैं और खुद अपना ही प्रेम उसमें भर के उसे अपना प्रेम पात्र बना लेते हैं। यह सब होता है। तो एक तो इस बात पर मैं भाई बहनों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि बहुत से ईश्वर विश्वासी साधक कई बातों में, बाहरी विधि विधानों में फंसे रहते हैं, सोचते हैं इतनी संख्या में इतना नाम पूरा हो जाएगा, लेना तो भगवान मिल जाएंगे। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। तो स्वामी जी महाराज कहते कि भैया तुम सोचो कि नाम की संख्या का महत्व है कि नाम तुमको प्यारा लगे, ये महत्व है। प्रेम स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता प्रेम तत्व के आधार पर होती है, ना कि किसी क्रिया विशेष के आधार पर। और नाम निष्ठ संत जो हुए हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम का ही आधार माना, तो उनमें भी शब्द और क्रिया की महिमा नहीं थी, नाम के प्रति उनकी बड़ी गहरी निष्ठा थी। तो प्रधानता निष्ठा की हो गई, शब्द की नहीं हुई। तो नाम निष्ठ बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके जीवन को आप देखेंगे तो उसमें क्रिया का महत्व नहीं था, नाम के प्रति उनकी ऐसी ही निष्ठा और ऐसी ही प्रियता थी जैसे कि नामी के प्रति होती है। तो उन्होंने उसको अपना इष्ट माना, उसको अपना साध्य माना और उसके प्रति अपने संपूर्ण जीवन की सारी भावनाएं उस नाम से अटैच कर दिया, उसी से उसको जोड़ दिया। तो मैंने जो मानव जीवन की व्याख्या की तो मेरे भीतर ये अर्थ निकला कि भाई महत्ता किस बात की है कि मनुष्य की सारी जीवनी शक्ति, संपूर्ण भावनाएं नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति, प्रभु की महिमा के प्रति लग गई कि नहीं लग गई, इस बात की विशेषता है। ऐसा नहीं कि तन भी बना रहे, धन भी बना रहे, कुटुंब भी बना रहे, दुनिया में नाम सम्मान सुख सुविधा सब बनी रहे और उसके साथ ही भक्ति भक्त भी हो जाऊं। तो जहां अन्य नाशवान वस्तु परिस्थिति और व्यक्तियों का महत्व है, जहां नाशवान के प्रति खिंचाव और आकर्षण है, ऐसे व्यक्तित्व में वह परम पवित्र प्रेम प्रवाहित नहीं होता है। तो परिवर्तन प्रभु की ओर से नहीं होना है, वे सब समय समान रूप से सभी में भीतर बाहर विद्यमान ही है। ऐसा नहीं कि मेरे नाम लेने से बन जाएंगे और नहीं लेने से बिगड़ जाएंगे, कि मेरे नाम लेने से ईश्वर सिद्ध होगा और नहीं लेने से नहीं होगा। तो सत्य उसको नहीं कहते हैं जो किसी अपनी उपस्थिति के लिए किसी और की अपेक्षा रखता हो। सत्य वो नहीं होता है, वो तो स्वयं सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध होता है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, वे हमारे विधि विधान से, हमारे साधन से, हमारी श्रद्धा भक्ति से बन जाते हों और श्रद्धा खत्म हो जाए तो बिगड़ जाते हों, ऐसी बात नहीं है। ये तो रहते ही हैं, हमेशा ही हैं, और समान रूप से भीतर बाहर सब तरफ विद्यमान ही हैं। तो मैंने सोचा कि अंतर कहाँ आता है, तो आप मनुष्य के अहम रूपी अणु की बनावट पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अहम रूपी अणु मैं किसको कहती हूँ, कि हम सभी लोग एक अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं, भीतर भीतर अपने आप को सब समय भासित होता रहता है कि मैं हूँ। लगता है कि नहीं लगता है, नहीं? मैं हूँ। तो ये हाथ में है, नहीं। ये आंखें में है, नहीं, क्योंकि हाथों के कट जाने के बाद भी मैं हूँ, और आंखों के खराब हो जाने के बाद भी मैं हूँ, और पांव कट जाने के बाद भी मैं हूँ। और मैं हूँ कहने के लिए वाणी काम न करे, जुबान बंद हो जाए, तब भी मैं हूँ। भीतर भीतर यह चेतना बनी रहती है कि मैं हूँ। तो ये मैं हूँ जिसको, जिसके आधार पर हम लोग इसको अनुभव करते हैं, वो हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है, भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है। जानने वाले जो ज्ञानी जन है, अनुभवी संतजन है, वो कहते हैं कि इस मैंपन की रचना जो है तुम्हारी, वो अलौकिक तत्व की है। शरीरों की रचना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शरीरों की रचना जो है, यह तो भौतिक तत्व की हुई है, और इस मैं की रचना अलौकिक तत्व से हुई है। तो अलौकिक तत्व से इसकी रचना हुई है, इसलिए इसमें यह सामर्थ्य है कि ये जब चाहे तब, जब पसंद करे तब, उस अलौकिक तत्व की सत्ता को स्वीकार कर सकता है। उस अलौकिक तत्व के आनंद को, सातत्य को, उसके अविनाशी स्वरूप को अपने में प्रकट हुआ अनुभव कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि यह मैं स्वयं ही अलौकिक तत्वों से बना हुआ है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। इसी आधार पर जो सिद्धांत वाक्य है वो ऐसा है कि भाई इस मैं का नाश नहीं होता, तो अविनाशी के तत्व से बना हुआ यह मैंपन भी अविनाशी ही है। अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीरों के साथ अपने को मिला लिया तो मृत्यु का भय सिर पर चढ़ गया, और बनने बिगड़ने वाले संसार की ओर आकर्षित हो गया तो आसक्ति के विकार में फंस गया। शरीरों की खातिर से धन की महिमा को स्वीकार कर लिया तो लोभ के विकार में फंस गया। तो कहीं लोभ का भार ढो रहा है, कहीं मोह का भार ढो रहा है। अविनाशी होने पर भी अविनाशी के आनंदमय अनुभूतियों से वंचित होकर नाशवान के साथ अपने को मिलाकर नाश के भय से भयभीत होकर जी रहा है। अपने पर यह दशा लागू हो रही है कि नहीं? हो रही है। अब इसमें से निकलना अपने को अभीष्ट है कि नहीं? अभीष्ट है। उसी के लिए हम लोग सब यहाँ आकर के बैठे हैं। तो अब देखो, अब कैसे करें, कैसे इस दशा से निकलें? तो बड़ी बढ़िया बात है, मनुष्य के अहम रूपी अणु की रचना में वो क्या है कि अपने संबंध में वो जिस स्वीकृति को स्वीकार कर लेता है उसी के साथ वो अपने को मिला देता है, उसी से उसका तादात्म्य हो जाता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर इतना हुआ कि चूंकि वो अविनाशी तत्व से बना हुआ है, इसलिए जब वो अपने को नाशवान शरीर और संसार से मिला के इनका सुख लेना पसंद करता है तो इनसे उसकी जातीयता नहीं है। तो चाहता तो है मिला के रखना, पसंद तो किया उसने इसके साथ मिल के रहना, लेकिन दोनों का मेल कभी बैठता नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत प्रकार की अनुकूलता के बीच में वो भीतर 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 अस्थिरता, अनिजी अनिजी उसको लगता रहता है, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए, कि सब प्रकार की बाहरी अनुकूलता में भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मालूम होती है। समझदार आदमी थोड़े में समझ जाता है कि भाई मेरा घर ये नहीं है, मेरे नाते रिश्ते कुटुंबी ये नहीं है, इनके बीच में रह करके संतुष्टि नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या है कि आपका मैंपन बना है अलौकिक तत्व से, और वो चाहता है अपने सजातीय से मिलना। उसके भीतर भूख प्यास उस अनंत अविनाशी के अनंत ज्ञान प्रकाश से है, उसकी भूख प्यास उस प्रेम स्वरूप परमात्मा के मधुर रस की है, और हम लोग अपने उस स्वरूप को भूल करके जब देह बुद्धि से जड़ता के स्तर पर उतर कर इस जड़ जगत के संयोग से सुख भोगना पसंद करते हैं तो अनेक विकारों में फंस भी जाते हैं और भीतर अपने को संतुष्ट भी नहीं कर पाते। तो ये आपकी जो रचना है उसकी विशेषता है कि आप विजातीय के साथ मिल करके दिल बहलाना चाहते हैं तो वो दिल उसमें फंसता नहीं है, बहलता नहीं है। बार बार हमारी आसक्ति से हमारा मन चित्त बुद्धि हमारी इंद्रियां जगत की ओर लगती हैं और बार बार स्वभाव से उधर से हट जाती हैं, क्योंकि हमारी सजातीयता इससे नहीं है, बनने बिगड़ने वाले से नहीं है, हमारी सजातीयता उस अविनाशी से है, उस अविनाशी आनंद से है, उस अविनाशी प्रेम रस से है। इस बात पर अगर आपकी दृष्टि चली जाती तो साधन के पथ की सब कठिनाइयां दूर हो जाती। कितना बड़ा भ्रम बैठा है अपने में कि हम लोग सोचते हैं कि हमने पसंद किया था भगवान का भजन और मन इतना पाजी है कि उसको संसार पसंद है। तो स्वामी जी महाराज कहते कि भैया, मन का अगर स्वतंत्र अस्तित्व होता और वो तुम्हारी बात को सुन करके उत्तर दे सकता होता तो तुम पर मुकदमा दायर कर देता कि भूल करो तुम और दोष लगाओ मुझको। तो मन बेचारे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मन भी तो एक करण है, इंद्रियां भी करण है, बुद्धि भी करण है, कर्ता धर्ता तो आप हैं। इस दृष्टि से ईश्वर में विश्वास करने वाले सज्जन, ईश्वर में विश्वास करने वाले भाई बहन यदि चाहते हैं कि इसी वर्तमान में शरीर के नाश होने से पहले उस अशरीरी अविनाशी परमात्मा से मेरी भेंट मुलाकात हो जाए और प्रेम के आदान प्रदान का आनंद आ जाए, तो उनको अपने अपने अहम के बनावट में विश्वास करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, विचार के द्वारा, मान्यता के द्वारा, आवश्यकता के द्वारा, जैसे भी हो अपने को ये बात समझा ही लो कि चाहे कुछ भी करोगे इस विजातीय के साथ मिलकर रह नहीं सकोगे और ये विजातीय तुमको संतोष दे नहीं सकेगा, आज तक दे नहीं सका। संसार और शरीर हम लोगों को संतोष दे सका? नहीं दे सका। तो आज तक दे नहीं सका, आगे भी दे नहीं सकेगा। इसको पकड़ करके बैठना हम लोग चाहते हैं तो बैठ नहीं सकेंगे। अनवरत गति है, निरंतर गति है। कौन सी गति है? निर्माण और विनाश। एक ओर बनता जाता है, दूसरी ओर बिगड़ता जाता है, बनता जाता है, बिगड़ता जाता है। तो जहाँ निर्माण और विनाश का अनवरत क्रम चल रहा है उसमें परम शांति चाहने वाले को संतोष मिलेगा ही नहीं। तो आज तक मिला नहीं, ये हमारा आपका अपना जाना हुआ तथ्य है, और कभी मिलेगा नहीं, ये बहुत ही युक्ति युक्त निर्णय है, खूब लॉजिकल कंक्लूजन है कि आगे भी नहीं मिलेगा। तो एक तो अपने को इस बात को समझाना है, और दूसरी बात जो ईश्वर विश्वासी होने के लिए अनिवार्य है वो ये है कि जिसकी तुम भीतर भीतर आभास सब समय पाते ही रहते हो, आवश्यकता अनुभव करते ही रहते हो, जिसकी विद्यमानता वो भीतर वाला भी हम पर प्रकट कर रहा है और उसी का प्रतिरूप ये बाहर से भी हम लोगों पर प्रकट हो रहा है। अब थोड़ा ऊंचे स्तर से विचार कीजिए, जब एक ही का अस्तित्व है उसके अतिरिक्त दूसरा को कुछ स्वतंत्र अस्तित्ववान है ही नहीं, तो जो ये व्यक्त जगत दिखाई दे रहा है ये उससे अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला नहीं है, ये भी उसी में से निकला है। तो वही परमात्मा, वही मेरा प्यारा अपने असली रूप में अपना प्रेम निमंत्रण दे करके हम लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। सुख की प्रवृत्तियों में विचरने वाला व्यक्ति भी रह रह के परमात्मा को याद करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? देह में आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी समय समय पर परमात्मा का नाम लेता रहता है, तो वो भीतर से खींचते रहते हैं अपनी ओर, और बाहर से भी इस व्यक्त जगत के रूप में भी वे स्वयं ही हम लोगों को अपने इस बाहरी रूप की नश्वरता का परिचय दे दे करके इसकी ओर से हटाने का प्रयास करते रहते हैं। ये भी उसी मंगलकारी का मंगलमय विधान है कि बहुत प्रिय संयोग जो माना उसमें झटपट वियोग हो गया। बहुत प्रिय संयोग संसार में जहाँ आपने माना कि ये तो बड़ा सुखद है, तो जिसको आपने बहुत प्रिय संयोग माना उसमें बहुत ही भयंकर दुखद वियोग आ गया कि नहीं आ गया? ये विधान किसका है? सृष्टिकर्ता का है। यह विधान किसका है? आपके प्यारे का है। यह विधान कैसा है? आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी है। तो प्रभु का ही प्रतिरूप यह जगत जो है वो भी अपनी नश्वरता का परिचय देकर हम लोगों को सलाह देता है कि भैया हमारे में कुछ है नहीं, उधर ही जाओ। ये कह रहा है कि नहीं? इसमें अपना मंगल है कि नहीं? लेकिन वारे हम उस मंगलमय की मंगलकारिता पर दृष्टि नहीं जाती तो उसको गाली देना शुरू करते हैं। तुमने हमारा बिगाड़ दिया, तुमने हमारा बिगाड़ दिया। बिगाड़ा किसने? मैंने, खुद ने। उन्होंने बनाया, संयोग में वियोग दिखाकर, जिंदगी में मृत्यु दिखाकर, सुख में दुख दिखाकर, निर्माण में विनाश दिखाकर जगत की ओर से वे अपनी ओर बुला रहे हैं। अरे मेरे बच्चे उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो इतनी मंगलकारिता है उनकी। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कविता है और उसमें यह बताया गया कि परमात्मा जो है जगत पिता, उसने यूं करके गोदी में पकड़ रखा है मनुष्य को, और मनुष्य जो है वो अपने विकारों से अंधा हुआ, अंधेपन में वो दौड़ दौड़ करके संसार की ओर दौड़ रहा है और खोज रहा है कि कहाँ रस मिलेगा, कहाँ रस मिलेगा, कहाँ रस मिलेगा। तो परमात्मा की तरफ से बहुत प्रेम भरी आवाज उस कवि ने लिखा, ओ माई चाइल्ड, ओ ब्लाइंड। परमात्मा कह रहे हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे अंधे, तू तो मेरी गोदी में ही है, मैंने तो तुमको कस के पकड़ रखा है, जरा मेरी ओर देख तो सही। और वो उल्टी तरफ देख रहा है, तो ये पीछे से उसको गोदी में पकड़े हुए हैं और वो सामने की तरफ अपने अंधेपन में कहाँ रस है, कहाँ रस है, कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, कहाँ जीवन है, कहाँ जीवन है। कभी कभी जंगल में दौड़ रहा है, कभी महल में दौड़ रहा है, कभी धन में दौड़ रहा है, कभी खुराक में दौड़ रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो छटपट छटपट कर रहा है, भाग करके उधर जा करके संसार की तृष्णा में उस अग्नि में जल जाने के लिए। और उसका जो परम हितैषी पिता है, उसने कस के पीछे से यूं पकड़ लिया है और पुकार रहा है, ए मेरे प्यारे बच्चे, अरे वो पगले तुम कहाँ जा रहे हो, अरे अंधे तू कहाँ देख नहीं रहा है मुझको, मैं यही तो हूँ, मैंने तो तुमको संभाल रखा है, मेरे बच्चे जरा उलट कर मेरी तरफ देख तो सही। तू जिस प्रेम को खोज रहा है, तू जिस जीवन को खोज रहा है, वो तो तेरे साथ ही है। कई स्टांजा है, वो सब मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कभी याद आ जाए तो आनंद आ जाता है। और स्वामी जी महाराज से एक बार एक साधक ने पूछा कि स्वामी जी महाराज बताइए परमात्मा कहाँ है, आप दिखा सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा, हाँ दिखा सकता हूँ, बताइए कहाँ है। तो कहा, तेरे पीछे है। तो वो युवक लड़का था, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, समझदार तो था ही, स्वामी ने कहा तेरे पीछे है देख। तो ऐसा करके पीछे देखा तो कहने लगा कि कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमने पीछे देखा कहाँ, फिर घुमाया ऐसे, तो ये भी तो सामने ही हुआ ना, पीछे तो हुआ नहीं। तो मैं बिल्कुल सच कहता हूँ भैया, परमात्मा तेरे पीछे ही है, तू फिर घुमा के देख तो सही। और एक दूसरी जगह पर बड़े अच्छे सूत्र के वाक्य लिखे हुए हैं। ये लिखा है कि जो संसार की कामना लेकर परमात्मा के पास जाता है, उसके लिए परमात्मा भी संसार है, और जो निष्काम होकर संसार के पास जाता है, उसके लिए संसार भी परमात्मा है। कितनी अच्छी बात है। तो संसार की कामना लेकर परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा भी संसार है, और निष्काम होकर संसार के पास जाता है तो संसार भी परमात्मा है। तो ऐसा अद्भुत है आपका अहम, ऐसा विलक्षण तत्व है कि जिसके समान दूसरी कोई बात है ही नहीं। बड़ी विलक्षणता है उसमें। क्या विलक्षणता है कि अपने को शरीर से मिला दो, संसार से मिला दो, सुख भोग की आसक्ति के आधार पर तो सब व्यवहार जड़ जगत के समान करने लगो। हाय हम मर रहे हैं, हाय हम मिट रहे हैं, हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और विवेक के प्रकाश में अपने को मिला दो परमात्मा से, तो उन्हीं के समान आनंद स्वरूप हो जाओ, उन्हीं के समान प्रेम स्वरूप हो जाओ। तो अपनी भूल जनित स्वीकृति को मिटा देना और जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम सत्संग है। इस सत्संग के लिए कितना परिश्रम चाहिए, कितना समय चाहिए, कितनी सहायता चाहिए, सोचो तो। ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा भ्रम हो गया है सत्संगी समाज को कि सोचते हैं कि बहुत दिन तक सुनते सुनते तो कुछ होगा। अरे भाई, सुनी हुई बात को अगर मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं तो कितने दिन भी सुनो, सुनते सुनते सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, और सुने हुए वाक्य का अनुसरण ना करो तो कल्याण नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हम लोगों को होने नहीं देना चाहिए। सुनने की शक्ति के रहते रहते सुनना खत्म करो, बोलने की शक्ति के रहते रहते बोलना खत्म करो, तो सुनने का जो राग है वो भी मिट जाएगा और बोलने का जो राग है वो भी मिट जाएगा। और इस सुनने और बोलने में थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा लगता रहता है, इससे बहुत अच्छा, इससे बहुत ऊंचा जीवन है न सुनने में न बोलने में। वो कहाँ है? वो सत्य की स्वीकृति में है। वह सत्य कौन सा है? ईश्वरवाद की दृष्टि से प्रभु की आत्मीयता है। तो उनके साथ जिसने आत्मीयता स्वीकार कर लिया, उसके अहम में एक प्रकार का परिवर्तन होता है और स्वतः ही होता है। तो असत्य को जब हम लोग स्वीकार करते हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरे बेटे बेटी, ये मेरे कुटुंबी, ये मेरी संपत्ति, तो असत्य को स्वीकार करते हैं तो विकारों की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन अहम के भीतर जो सत्य है उस सत्य का नाश नहीं होता। और जब नित्य विद्यमान परमात्मा की आत्मीयता स्वीकार कर लेते हैं, मेरो तो दुर्धर गोपाल दूसरो न को, जैसे मीरा जी ने स्वीकार कर लिया, तो अपने द्वारा जब उस नित्य विद्यमान आत्मियों की आत्मीयता को स्वीकार कर लेते हैं तो विकारों का नाश हो जाता है और आत्मीयता जो है उसके प्रभाव से, उस अहम में से ही बीज रूप में जो प्रेम तत्व विद्यमान है वो प्रकट हो जाता है। तो नाशवान को अपना मानने से भी नाशवान के साथ अभिन्नता नहीं होती, और अविनाशी को अपना मान लेने से नाशवान विकार नष्ट हो जाते हैं। पकड़ में आती है बात? तो अब इस ढंग से हम लोगों को चलना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्या जाने कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। तो तीन चार बातें हैं जिन्होंने आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु की वाणी में श्रद्धा करके वेद पुराण गीता रामायण कुरान बाइबल इनकी वाणी में श्रद्धा करके जिन्होंने परमात्मा को अपना कहकर स्वीकार कर लिया, उस स्वीकृति से उनका अहम बदलता है, और अहम बदलता है तो सारे के सारे करण स्वतः ही बदल जाते हैं अपने आप। तो पहले मुझको अपनी स्वीकृति बदल देनी चाहिए। और विश्वास का बड़ा भारी फल मैंने सुना है संत की वाणी में, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जीवन का सत्य है उसमें अगर विश्वास करो तो उस सत्य में विश्वास करने का फल जो है वो ज्ञान के समान ही फलदायक होता है। अर्थात जिस नित्य तत्व में हम विश्वास करते हैं वह नित्य तत्व हमारे लिए ज्ञान से प्रमाणित होने के समान ही प्रत्यक्ष हो जाता है, और हुआ है भक्तों के जीवन में वह सत्य ऐसा ही प्रत्यक्ष हुआ है। बड़ी कोमलता है उस ओर और बड़ा आकर्षण है उस ओर। परमात्मा को हम सब लोग सहज ही प्यारे हैं, अपने ही में से उन्होंने बनाया तो हम सभी उनको बहुत प्यारे लगते हैं और हर प्रकार से हमारी की हुई भूलों को क्षमा करने का एक सहज स्वभाव है परमात्मा का। हर तरह से हमारी की हुई भूलों को क्षमा करते रहते हैं, हमारा वर्तमान में देखते हैं, हमारा भूतकाल देखते नहीं है। और कितने ही दिनों का भूला भटका अपना बच्चा हो, कितना ही माता पिता का विरोधी बन के लड़ता झगड़ता रहा हो, भटक गया हो, विमुख हो गया हो, कितने भी वर्षों के बाद अगर वह प्रेम से प्रेरित होकर आवे और कहे कि मुझसे भूल हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अब तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तो हमको आपका प्यार चाहिए, आपकी गोद चाहिए, तो माता पिता कितने खुश हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं। तो जब सांसारिक माता पिता अपनेपन के नाते अपने बच्चों की भूतकाल की सब भूलों को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो क्षमाशील क्षमा सिंधु अनंत परमात्मा हमारी भूलों का हिसाब रखेंगे? ये नहीं रखते हैं। अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जहाँ उन्होंने शरण में आए हुए की भूतकाल की सब भूलों को क्षमा किया है, तो वे हमारी भूल को भी मिटा देते हैं और भूतकाल की हुई भूलों के परिणाम को भी मिटा देते हैं। इतनी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तो निर्दोष भी बना देंगे वर्तमान में तत्काल और भूतकाल की हुई भूलों के परिणाम को भी क्षमा कर देते हैं। करते हैं ऐसा, देखते नहीं है हमारी भूतकाल को। आवश्यकता क्या है कि एक बार साहस करके संपूर्ण हृदय की भावना के साथ उनकी आत्मीयता को हम लोग मान लें। फिर तो नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, माला जपते हैं कि नहीं जपते हैं, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी रुचि बनावट परिस्थिति की बात हो जाएगी। अगर भीतर में आपने उनके नित्य संबंध को स्वीकार कर लिया तो बाहर से जो भी विधि विधान आप करेंगे सब सजीव हो जाएगा, सब सजीव हो जाता है। पुष्प का अर्पण करना भी सजीव हो जाता है, माला जपना भी सजीव हो जाता है, भोग लगाना भी सजीव हो जाता है, अनेक प्रकार से उनकी सेवा करना भी सजीव हो जाता है। साकार निराकार उपासना के जितने विधि विधान हैं सब सजीव हो उठते हैं, सबके द्वारा सहयोग मिलने लग जाता है और साधक की साधन की हर क्रिया में उसके हृदय का प्रेम भाव समा जाता है। परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है उनको, बहुत मजा आता है उन्हें। तो असली बात जो है वही अपने को पकड़ना है और उसके सहारे जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ न कुछ तो करेंगे ही हम लोग। तो मैं समझती हूँ कि इस हाड़मास के शरीर को रखने के लिए एक कमरे में हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो प्रभु का प्रतीक बना करके मंदिर में बैठाया है, तो उस मंदिर का काम क्यों नहीं करोगे? अगर एक शरीर जो बात बात में गंदा हो रहा है तो उसकी गंदगी की सफाई करने के लिए विविध प्रकार से स्नान करते हो, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हो, तो अपने प्यारे का विग्रह बैठा रखा है तुमने, तो उनको क्यों नहीं स्नान कराओगे, क्यों नहीं सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करोगे? तो इस प्रकार से वो जितनी प्रतीकात्मक बातें हैं वे सब सार्थक हो जाती हैं। कब? जब परमात्मा को अपना मानो तब। थोड़े दिन पहले की बात है, शाहबाद जिले के एक गांव की घटना है। वहां पर एक परमात्मा के प्रेमी गृहस्थ पुजारी रहते थे, पूजा करते थे, करते करते वृद्धावस्था आ गई उनकी। तो मंदिर में भगवान राम, माता जानकी जी और भैया लखनलाल का विग्रह पहले से स्थापित था। तो खड़ी खड़ी मूर्तियां थी, तीनों मूर्ति। वो बाबा पूजा करता था, अपना बालक मानता था, तो बालक की सेवा करने में बाप को बड़ा मजा आता है, खूब प्रेम से करते। केवल वे नौकरी करने के हिसाब से नहीं, उसकी जिंदगी ही रमी थी उन मूर्तियों की पूजा में। तो बूढ़ा हो गया, कमर में दर्द होने लगा, रीढ़ की हड्डी झुक गई। तो एक दिन स्वप्न में उनके लाला ने कहा कि बाबा तू बूढ़ा हो गया, तेरे को सेवा में कष्ट होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, तो अब तू पूजा छोड़ दे। तो भक्त तो जब उनकी प्रियता बढ़ जाती है, आपस में मेल जोल बढ़ जाता है, तो शिष्टाचार की बातचीत खत्म हो जाती है, तो एकता हो जाती है। तो बूढ़ा कड़क के बोलने लगा कि लाला ये कैसे हो सकता है, शरीर के रहते रहते मैं तेरी सेवा कैसे छोड़ दूंगा। अब लाला सोचने लगे कि अब और कुछ कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, सेवा तू नहीं छोड़ेगा तो बैठ करके पूजा किया कर। तो बड़ा अच्छा सिखा रहे हो लाला, तू खड़ा रहेगा मैं बैठ जाऊंगा, ये नहीं होगा। अच्छी बात, स्वप्न खत्म हो गया, निद्रा पूरी हो गई, रात बीत गई। दूसरे दिन सवेरे जब बूढ़ा बाबा सामान लेकर के मंदिर में पूजा करने आया, तो उसके परम प्रेमी लाला तीनों मूर्ति पालथी मार के बैठे हुए मिले। बैठे, उनको बैठने में क्या देर लगती। अब बूढ़े बाबा की कमर में दर्द हो और लाला सही, बाबा कष्ट पाए और लाला सेवा ले,